श्री श्री गुरुवन गौरंगा की जय। गौरव प्रेमानंद नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्शेषं पाश्चा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेण भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा
राम रामा हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के प्रातः काल के श्रीमद् भागवत प्रवचन में। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद आरंभ हुआ है, उसके दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा होगी। दूसरे इस अध्याय के अंदर जो अध्याय का नाम है कि भगवान सबके हृदय में है, तो जो भगवान हृदय में है उसका ध्यान कैसे किया जाए ये प्रणाली बताई जाएगी। पूरे अध्याय में 36 से 37 श्लोक हैं। पूरा अध्याय जो सुनेंगे उनके लिए पहले एक बात बता देते हैं, बाद में श्लोक को पढ़ते हैं। एक बार टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हम गए तो हमको एक पेपर दिया, कहा जो पहला करेगा, सबसे पहला जो करके आएगा उसको वो फर्स्ट हो जाएगा। लंबा पेपर था, पहले पहले लिखा दो और दो कितना हुआ लिखो, फिर लिखा जो लिखा उसको दो से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे करो, लंबा जोड़ा लिखते लिखते, और लास्ट में लिखा था कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम साइन कर दो। तो जो लिखते हो तेज तेज करो, दो दो चार 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 चीज, और जिसने पूरा एक नज़र डाल दी कि है क्या लिखने से, फिर उसने लिखा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम साइन कर। तो बुद्धिमान एक ही था जिसने नाम साइन करके पहले सबसे दे दिया, बाकी हिसाब करते रहे। इस अध्याय को पढ़ोगे तो इतना चक्कर आएगा, क्योंकि इसमें चक्करों की बात है, इसमें चक्रों की बात है कि छह चक्र हैं, वो मूलाधार चक्र से ले मणिपुर चक्र से इन चक्रों के अंदर से इसे लेके ऊपर जाओ, ये सब कथा करके और आखिरी में कहेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान वासुदेव की भक्ति करो सब हो जाएगा। इस अध्याय का आखिरी श्लोक ये है, इस बात को कि जब ये श्लोक कोई बोलेगा ना, क्योंकि भगवान को तो भाई जो मेडिकल स्टोर खोलेगा उसको दवाई तो सब रखनी है ना, सबके लिए रखनी है, लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि मरीज को कौन सी दवाई से फायदा होगा। सब दवाई पड़ी है तो सब दवाई तो सब पड़ी है, लेकिन काम कौन सा। तो इसलिए बात करने के लिए भागवत सुना रहे हैं ब्रह्मा के हृदय में, ये ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं भागवत। ये जो बात है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को सुना रहे हैं, उसका वर्णन है और आस्ते आस्ते ये आगे बढ़ रहा है। तो इस अध्याय को पढ़ते पढ़ते इस बात का ध्यान रखना कि आखिरी श्लोक भी आएगा और आखिरी श्लोक में जो बात होगी वो दो शब्द पहले सुन लें ताकि मालूम हो कि हमें करना क्या है। क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते जाते जाते तो मणिपुर चक्कर को कैसे फिर आगे चक्कर से ऊपर जाना है, फिर ब्रह्मरुद्र में पहुंचना है, ये बातें पढ़ते पढ़ते हमारे को वो हिसाब करते रह जाएंगे दो और दो और चार का, और जब तक टाइम पूरा हो जाएगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। तो अंतिम श्लोक है उसको एक नज़र देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं। हे राजन, इसलिए मानव के लिए सबसे अच्छा क्या है, तस्माद सर्व आत्मना राजन, इसलिए सबके लिए राजा क्या है, हरि सर्वत्र सर्वदा, जो भगवान हरि सब जगह है, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मृतव्यश्च भगवान निर्णाम, कि भगवान का कीर्तन करो, भगवान के बारे में सुनो और भगवान का स्मरण करो, बस बाकी सब हो जो कह दिया वो आपने सुन लिया, लेकिन करो ये। और फिर कानों के द्वारा जो इस अमृत को पीते हैं, भगवान श्री कृष्ण के संदेश के अमृत को जो पीते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वो तो इस संसार के अंदर सारे अपवित्रताओं से एकदम पवित्र होके भगवान के परम धाम में प्रवेश करते हैं। तो बात आ गई आखिर में सुनने की, सारा दूसरे स्कंद का जो शीर्ष है वो सुनने के ऊपर महत्व है। पूरे दूसरे स्कंद के अंदर जो सार है कि सुनना चाहिए, कि दो प्रश्न पूछे सबके सामने, बार बार इसको दोहराने की इसलिए आवश्यकता है कि दो प्रश्न पूछे महाराज परीक्षित से, परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से। पहला प्रश्न पूछा है, सब आदमियों का भला किसमें, सब आदमी सब समय सब जगह क्या करें जो वेदों का सार है और उसे एक करने से उनको भगवत प्राप्ति हो। पहले सब आदमियों की भलाई की बात पूछिए और फिर कि जिसका अंतिम समय हो उसको क्या करना चाहिए, ये अपने विषय पर्सनल स्वयं का प्रश्न पूछा है, जिसको बुद्धिमता कहते हैं कि जो पहले दूसरे की भलाई का सोचे फिर अपनी बात करे। तो ये महाराज परीक्षित की शैली कहने की है, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति संसार में हुए हैं उनने दूसरे के भले का पहले सोचा है, अपनी बात बाद में की, ये कहने की शैली ऐसे होती है। बारह महाजनों का नाम जब गिना रहे हैं यमराज, तो सबका नाम लेने के बाद अंत में अपना नाम लेते हैं, ये शैली है कहने की। हम तो कहते हैं पहले हम बाकी सब पीछे, ये उल्टा मार्ग है। तो यहां हरे कृष्णा, क्या विषय, क्या बात चर्चा चल कर रहे थे इस बात का ना, क्या था बात अभी? सुनने की महिमा इसमें है, लेकिन वो बात उधर कैसे चली गई थी। हरे कृष्ण, हाँ दूसरे की बात। तो पहला प्रश्न है सबके भले का, सब जगह सब इंसानों के लिए करने योग्य क्या काम है, उसके लिए यही उत्तर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने। हमने सुना कि जो अपना भला चाहता है और भय से बचना, इच्छतम अभयताम, जो भय से बचना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम, सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, और मिर्यामान आए उसको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस विधि का वर्णन करते हुए पहले विराट पुरुष का, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है, हम जानते भौतिक चीजों को है, रहते भौतिक जगत में, तो ये भौतिक जगत भी भगवान का विराट स्वरूप है, तो उसका ध्यान करो। अब उसके ध्यान से आगे बढ़ के आज ये जो अध्याय है दूसरा, इसमें कहते हैं वो जो बाहर विराट रूप है ना, उससे ध्यान करते करते आपके हृदय में वही विराट पुरुष जो है उसका दूसरा स्वरूप जो भगवान का है वो आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, अब उसका ध्यान करो। तो अब परमात्मा के ध्यान के ऊपर आए दूसरे अध्याय में, और कैसे ध्यान करना है उस ध्यान का वर्णन करते हुए आज का श्लोक करते हैं कि परमात्मा का ध्यान, और आप इसको ऐसे समझ लें कि भगवान का मंदिर में हम जाते हैं तो हमको भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, अथवा भागवत पढ़ते हैं तो भागवत को कैसे पढ़नी चाहिए। ये श्लोक आज का है ध्यान की विधि, कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, कहाँ भगवान का ध्यान ये भी सुन लीजिए, अथवा मंदिर में जाते हैं तब भगवान का जब श्री विग्रह देखते हैं उसका ध्यान कैसे करना चाहिए, और फिर अगर कोई हृदय के अंदर मंदिर में नहीं है और मंदिर से बाहर है लेकिन अपने ठाकुर जी जिससे उसका संबंध है उसका ध्यान करना है तो कैसे करना चाहिए, और भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का अंग है उसका भी जब श्रवण करना है ध्यान करना है तो कैसे करना चाहिए, इन तीनों की शैली इस श्लोक में है। तो आइए पढ़ते हैं। एकैकशो अंगानि ध्यान भावे, पादादि यावद् हसैतं गदाभ्रतः, जितं जितं स्थानमपोयधारयेत्, परं परं शुद्ध्यतिधि यथा यथा, एकैकशो अंगानि ध्यान भावये, पादादि यावद् हसैतं गदाभिर्तः, जितं जितं स्थानम् अपोय धारये, परं परं शुद्ध्यतिधीय यथा यथा। एकैकशो अंगानि ध्यान भावयेत्, पादादि यावद् हसैतं गदाभृतः, जितं जितं स्थानम् अपोय धारयेत्, परं परं शुद्ध्यतिधीर यथा यथा। पढ़िए भाई। जितं जितं स्थानमपोय धारयेत्, परं परं शुद्ध्यतिधीर्य यथा यथा। एकैकशो अंगानि ध्यान भावयेत्, पादादि यावद् हसैतं गदाभृतः, स्थानमपोय धारयेत्, परं परं शुद्ध्यतिधीर्य यथा यथा। एकैको संगानि ध्यान भावयेत्, पदादि यावद् हसितं गदाभृतः,
जितम जितम स्थानम अपोय धार्ये परम परम शोध्यति धीर यथा यथा। माता जी एक एकंगान ध्यानो भाये तम जितम स्थानम पोहधारिये परम परम पादादियावधस्ति गदाभृत जितम जितम स्थानम अपोय धारये परम परम शोध्यति धीर यथा। एक एकैषः एक एक करके या एक के पश्चात दूसरा अंगानि अंगों को धिया ध्यान से अनुभाव्ये ध्यान करे पाद आदि पांव इत्यादि यावत् जब तक हसितम मुस्कान गदाभृतः भगवान जितम जितम धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए स्थानम स्थान को अपोयः छोड़कर धारये ध्यान करे परम परम उच्च उच्चतर शुद्धयति शुद्ध होती है धीहि बुद्धि यथा यथा जितनी। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा ध्यान को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके और उसे उनके हंसते मुख मंडल तक ले जाए, इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। जितना ही मन एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, परिष्कृत शुद्ध होगी। हरे कृष्ण। अनुवाद समझ में आ गया? बहुत एक बार फिर सुन लीजिए ठीक तरह से। ध्यान को मानो कि पहले आप मंदिर में जाते हैं तो कैसे ध्यान करना है, ये ध्यान करो कि आप कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं, तो ध्यान को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके और उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाएं, इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठते जाएं। जितना ही मन एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक शुद्ध होगी। हरे कृष्ण। कौन से भगवान ने आज वस्त्र पहने हुए हैं, क्या रंग है? लाइट ग्रीन, गुड, लाइट ग्रीन है हल्का, बहुत सुंदर। भगवान के लाल लाल तलवे के ऊपर घुंघरू बांधे हैं कि फूलों की माला है आज? कि दो चीजें मानते, कभी घुंघरू मानते कभी फूल मानते हैं, आज क्या है जाके देख के आए। कहने का भाव ये कि ये श्लोक पढ़ने से आज से हमारा मन ऐसा हो कि जब हम सुबह दर्शन आरती में जाते हैं तो भागना नहीं है, उस चीज को हृदय में ऐसे बिठाना कि जब वहां से बाहर आए आंखें बंद करके तो वो दिखाना आ चाहिए।
ये ध्यान की विधि है। और जब यहाँ आप वृंदावन में नहीं है और कहीं बाहर प्रचार में गए, तब भी सुबह उठ के पहले वो दर्शन आरती हो रही है, मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो जो चरण कमलों से लेके ऊपर ऐसे देखे मुख, जब मुस्कुराता हुआ मुख दिखता है कि चरण की लाली हृदय में बैठती है, उसको बिठाने का प्रयास, ये अनुभव करने का, यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है, अनुभावियत, ये अनुभावियत का यहाँ अर्थ लिखा है, ध्यान करना अनुभावियत का अर्थ, वैसे शब्द का अर्थ है अनुभव करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, अनुभावियत मतलब अनुभव करो, अनुभव करो का मतलब उस चीज को हृदय के अंदर आप देख सकते हो। अनुभव उसको कहते हैं कि जो पहले मैंने सुना है कहा है उस चीज को मैं नहीं भी सामने हो तो उसको देख लो, अनुभव उसको कहते हैं कि मेरा ये अनुभव है, इसका मतलब मैं एक बार कर दिया मुझे मालूम है ये क्या है, अभी अनुभव उसको कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस बात का, अनुभवित का अर्थ ये है। और ध्यान का भी अर्थ ये है कि सामने चीज नहीं हो तब भी दिखे, सामने है तो ध्यान तो नहीं, सामने है तो दर्शन है, लेकिन सामने नहीं है तब उसको देखे तो उसको ध्यान कहते हैं। जैसे मन के अंदर जब भगवान का ध्यान करते हैं, और इसका वर्णन आया है इससे पहले कि परमात्मा के रूप में 8 इंच को प्रभुपाद कहते हैं उंगली से लेकर अंगूठे तक, इतनी लंबाई का भगवान का स्वरूप है, और चार हाथों का स्वरूप है, हाथ में जो है कमल का फूल है, चक्र है, शंख है और गदा है, इस तरीके से भगवान हृदय में खड़े हैं, तो उसका ध्यान करना है चरणों से लेके ऊपर तक जो योगी है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्तों के लिए वही परमात्मा त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर के रूप में हृदय में प्रकट होते हैं, वही भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में होते हैं जिसका योगी ध्यान करते हैं, पश्यन्ति यम योगिनो, जो योगी जिसको देखते हैं चार हाथ वाले विष्णु के रूप में, वही भगवान भगवानों भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर के रूप में दिखता है। तो जब घर से बाहर है मतलब मंदिर से बाहर है, तब प्रतिदिन की ये क्रिया होनी चाहिए कि एक बार बैठ के भगवान को चरणों से लेकर मुखमंडल तक देखने का अभ्यास करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ये नियमावली बनानी चाहिए जीवन में, तो नित्य भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। अब तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वो किसी निराकार वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। भाई देखिए, अब यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के अंगों का ध्यान कीजिए, चरणों से, पाद आदि मतलब चरणों से, और फिर कहते हैं हसितम, मुस्कुराता हुआ मुख। अब कोई कहेगा मैं गोल लाला लाल एक इधर लगा दिया है धब्बा उसको देख रहे हो, लाल धब्बे को देखने से क्या होगा, तो उसका ध्यान कैसे करोगे? हाँ, कोई लाल लाल एक लाल हमने लकीर लगाती है उसका ध्यान करते रहो, लालटिन को जला के उसको देखते रहो, ये तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब लाइट नहीं थी लालटिन जला जला के उम्र गई, आंखें चली गई, कुछ नहीं देखा, तो लालटिन जला के देखने से क्या होगा। और ये कहते अंगानी, अंगों का ध्यान कर, तो प्रभुपाद इस बात के ऊपर बल दे रहे कि ये ध्यान की विधि जो आजकल सिखाई जाने जा ही रही है जगह 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 के ऊपर, हाँ कोई बना हुआ कहीं गोला बना हुआ है लाल रंग का, कहीं हरे रंग का, फिर लाइट सब बंद कर दो, अब इसको ऐसे देखते रहो, फिर आंख बंद करके इस लाइट को अंदर देखो, उस लाइट को अंदर देखोगे तो क्या होगा, अंदर में आपको प्रकाश हो जाएगा, फिर क्या होगा, काम सारे अंधकार के हैं, अंदर प्रकाश हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, अंदर प्रकाश हुआ तो हुआ क्या, बाहर से अंधकार करेंगे अंदर प्रकाश करके देखो। एक बेटे ने बाप से पूछा कि इतना धन अपने पास पिताजी कैसे आया है, तो बाप ने सब लाइटें बंद कर दी, तो उसने सोचा, बोला ध्यान करा, बोला कैसे आया, बोला देख नहीं रहा, बोला क्या हो गया, बोला अंधेरा, इसको क्या बोलते, बोला ब्लैक, बोला सब ब्लैक से आया। तो जो बाहर से अंधकार करके ध्यान करते हैं वो असल में ब्लैक का कारोबार है, वो अंधकार तो बाहर से अंधकार करते ब्लैक का कारोबार है, कहां ध्यान कराने की विधि बता रहे हैं। ये भागवत में ध्यान करने की विधि सीधी बता रही है कि भगवान के अंगों का ध्यान करो, और अंगों का भी चरणों से ध्यान करना शुरू करो, सीधा मुखमंडल पे नहीं देखना है, वहां तक जाने का अधिकार जब हो तब ऊपर जाना है, लेकिन चरणों में तो सबको स्थान मिलता है, सारा ध्यान क्या कहते भगवान के चरणों में स्थान मिले। कोई ये कहता है कि भगवान के मुख को देखता रहो, ये तो बहुत ऊपर की विधि कभी कोई कहता है, लेकिन प्रायः एक ही बात सुनने को मिलती है, भगवान के चरणों में स्थान मिले, भगवान के चरणों का कमलों का ध्यान हो, तो चरण भगवान के बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। एक बार कहा गिरिराज महाराज के साथ वो एक बीच के ऊपर जा रहे थे, तो बोले देखो पांव जलते हैं, जूती पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन सर को को तो गर्मी लगती है फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पांव जगह बगैर जूती के चल नहीं सकते हैं। तो चरण बहुत महत्वपूर्ण है, चरणों की रक्षा का जैसे आदमी ज्यादा करता है ऐसे भगवान के चरणों को ही हृदय में बसाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये चलते चलते चल बोला जूती लाओ भाई पाँव जल रहे हैं, लेकिन सर जल रही है तो चलो इसको तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जूते के बगैर नहीं आदमी चलता है, लेकिन छाता लेके सब जगह नहीं चलता है, लेकिन जूता पहन के ही चलता है। वो एक उदाहरण दे रहे थे कि चरण कितने महत्वपूर्ण होते हैं भगवान के ध्यान करने के लिए। तो निराकार के ध्यान की विधि भागवत में नहीं है, ये बात एक समझ में आनी चाहिए। और जितना ध्यान बाहर सिखा रहा जा रहा है, ध्यान के नाम में लोगों को जितना बाहर सिखा रहा जाए, वो सब अंधकार का ध्यान सिखाया जा रहा है कि अंदर में रोशनी होगी बाहर सब अंधकार कर, ये बात कर रही है अंदर में रोशनी होगी। तो बंद क्या हो सकता है आने वाले समय, अभी अंदर में रोशनी हम डॉक्टर लोग अंदर में रोशनी करते हैं, हम अंदर जब देखना होता है किसके पेट में तो नली डालते हैं उसको लाइट से मिलाते हैं, हमको तो अंदर रोशनी नजर आती है, अंदर हम सब एंडोस्कोपी करते हैं रोशनी से करते हैं, ये प्रकाश तो हमको आता है, तो ये तो डॉक्टर लोग कर सकते हैं अंदर में प्रकाश, हम तो दिल को भी अंदर देख लेते हैं कि कैसे चल रही है। तो ये कौन सी योग की विधि है, ये तो यंत्रों के द्वारा अंदर में प्रकाश डालना कोई बड़ी बात नहीं। और एक भक्त है हमारा, वो कभी योग ऐसे सीख के आया था, उसने बोला ऐसे हाथ रख के और अंदर में रोशनी देखना ये कोई बड़ी बात थोड़ी, आंखों को थोड़ा दबा दो अंदर से अपने चमका निकलती है कि निकल, देख लो जरा आंखों को थोड़ा जोर से दबाओ तो अंदर से प्रकाश दिखाई देगा अपने आप, ये देख लो करके क्रिया करनी है तो। लेकिन ये उद्देश्य नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, और सारे लोग इसके पीछे पागल है, प्रायः लोग इसके पीछे पागल है, ये बहुत बड़ी समस्या है संसार की। ध्यान के नाम में सब लोग मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। और श्री प्रभुपाद ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वो उनका विराट रूप हो, अब भगवान प्रभुपाद जी बिल्कुल उदारता से बोल रहे हैं, चाहे वो उनका विराट रूप हो जिसका वर्णन पहले अध्याय में हुआ है श्रीमद् भागवत के, चाहे वो भगवान का विराट रूप या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद रूप हो, विष्णु रूप को प्रमाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्चित विग्रहों की प्रमाणिक स्वरूप है। अब दूसरी बात करते हैं कि भगवान विष्णु जो शास्त्रों में प्रमाणित है, उसके जितने भी मंदिर स्थापित किए हुए हैं, विष्णु मंदिर का मतलब है राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण, ये विष्णु मंदिरों की वर्णन है, ये जहां भी स्थापित हैं ये प्रमाणित है, इसके ध्यान को करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अर्च विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करके क्रमशः ऊपर उठते हुए उनके मुस्कुराते मुख तक आना चाहिए। ये अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं मंदिर के अंदर स्थापित अर्च विग्रह के ध्यान की पद्धति बता रहे हैं। अब आगे सुनते हैं भागवत संप्रदाय, अब कहते भागवत संप्रदाय, अब भागवत हम भागवत संप्रदाय को मानने वाले हैं, भागवत संप्रदाय मतलब भागवत के जो जो सिद्धांत है उसको मानने वाले, इसको भागवत धर्म बोलते हैं, भागवत धर्म अथवा भागवत संप्रदाय। तो भागवत संप्रदाय शब्द लिखा है, भागवत संप्रदाय के अनुसार भगवान का रास, हाँ अब प्रभुपाद एक और बात करने जा रहे हैं, जैसे पहले बात की विराट रूप का अथवा भगवान के स्थापित मंदिर के अंदर अर्च विग्रह मूर्ति का ध्यान करना है, अब कहते हैं भागवत जो जो भागवत परंपरा अथवा भागवत संप्रदाय के अनुसार श्रीमद् भागवत जो है ना वो भी भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण अंग भगवान का अंग है, एक एक श्लोक के अंदर भी भगवान का अंग है, जितने महाप्रभु श्रीमद् भागवत कृष्णेर अंग, भगवान श्री कृष्ण का अंग है वो। तो भागवत में जो रास नृत्य है, जो रास लीला है, जो श्रीमद् दशम स्कंद में है, भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, जो भगवान का मुखमंडल भागवत में क्या है, अब भागवत को भगवान का स्वरूप करके प्रभुपाद ध्यान की, क्योंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांगे न लगाएं। श्रेयस्कर होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपना ध्यान एकाग्र करने का आरंभ करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को स्वतः पहचानते हैं, उन्हें नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं। ये सारे दिव्य कार्यकलाप हैं। ये हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। अब दो बातें श्री प्रभुपाद यहां कर गए। पहली बात तो ये कर दी कि श्रीमद् भागवत को क्रमशः पढ़ना चाहिए। पहले स्कंद से, पहला और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का चरण कमल है। और इससे पहले जो श्लोक परसों हुआ है उसके अंदर तो विशेष रूप से ये लिखा है, आखिरी लाइन उसकी ये है कि जिसका मन अभी तक विषय से उपरांत नहीं हुआ है उसको पहले और दूसरे स्कंद से आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये इससे पहले जो श्लोक हुआ है उसके भावार्थ की आखिरी लाइन है कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है काम वासना से तब तक श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के ऊपर वर्णन करना अथवा उसको समझना उसका अधिकार ही नहीं है। एक प्रभुपाद जी कटाक्ष में उसमें लिखा है कि भागवत के आसन के ऊपर बैठ के भागवत का वर्णन करने बैठ जाए लेकिन काम से ही उपरांत नहीं है तो उसके भागवत करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए पहले और दूसरे स्कंद में ही रमण करना चाहिए जो भगवान के चरण कमल है। ये जो इससे पहले श्लोक हुआ उसकी आखिरी लाइन है, उसकी आखिरी लाइन में ये चीज आपने अगर पढ़िए तो लिखा है श्रीमद् भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों की ही पाठ करने तक ही सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम नौ, हाँ इसे पहले प्रथम नौ स्कंद उसके बाद दसवें स्कंद तक जाए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग अब भी काम वासना में अनुरक्त होकर फंसे हुए हैं उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। ये बहुत हेवी स्टेटमेंट प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो पहली बात कह रहे हैं भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को ठीक तरह से समझना चाहिए, ये भगवान के चरण कमल है। और फिर कहते हैं इसी तरीके से मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है ठाकुर का अर्च विग्रह उसका भी अगर हम सेवन करना शुरू करते हैं चरणों से तो फिर उसको नहलाते हैं अथवा वस्त्र पहनाते हैं तो ये काम करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। पद्धति किस चीज की? हृदय को शुद्ध करने के लिए। कवि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जागती समाधि क्या है? लोग तो समाधि में आंखें बंद करके समाधि में बैठते हैं लेकिन आंखें खुली आंखों से समाधि किसको कहते हैं? जो भक्त बड़े ध्यान के साथ भगवान को स्नान करा के वस्त्र पहना के आभूषण पहना के हर एक चीज को बहुत ध्यान से जो सुबह अर्च विग्रह के उपासना करता है ये खुली आंखों की समाधि है। इस खुली आंखों से समाधि है यानी भगवान का ध्यान है। आओ चरणों में भगवान के तुलसी दल और चंदन लगाना है, भगवान के जो है पांव में अब फूल बांधने हैं, अब भगवान को ये वस्त्र पहनाना है, अब ये हार पहनाना, अब कान में कुंडल डालना है, अब तो एक एक चीज अंगूठी डालनी है, तो एक एक अंग का ध्यान करके उसको ये पद्धति है। लेकिन आगे चल पे इसमें सावधान करते हैं प्रभुपाद जी, बड़ी मजेदार चीज लिखे हैं। ये हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्काता हुआ मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं तो हम उनके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला को दसम स्कंद में दिया गया है अध्याय 29 से लेकर 34 तक। तो वही बात करें, बड़े ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। अब मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है चाहे वो चरण कमलों पर हो या पिंडलियों अथवा जांघों अथवा वक्ष स्थल पर वो उतनी ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट अशुद्ध होगी जितना, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से जितना अधिक वृत्त होता जाता वर्तमान जाता है उतनी उसकी शुद्धि बढ़ती जाती है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध अशुद्ध है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से वृत्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। क्या बात समझ में आई इसमें? इसमें बात क्या समझ में आई? बात यह समझ में आई कि जिसका ध्यान चरणों तक लगता जाता है और आगे आगे जितना ध्यान एकाग्र होने लग रहा है उतनी उसकी बुद्धि शुद्ध हो रही। तो अब हम ना अपना देख लें कि हमारे चरण पहले हृदय में स्थापित हुए हैं कि मुस्कुरात भगवान का वक्षस्थल पे जो वैजयंती माला है वो झिलमिल करती हुई, ये सब ध्यान की पद्धति है। तो जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी उतनी भगवान के अंगों का बिल्कुल बिल्कुल क्लियर विजन चिट्टा, हाँ बिल्कुल साफ साफ वो दिखने लग जाएंगे, उतने साफ दिखते चमकते हुए दिखते लग जाएंगे जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? वो ऐसी ध्यान करने से होगी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? पर भगवान का ध्यान करने से होगी, और जितना ध्यान करेंगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने की जो क्रिया है वो भी भगवान के अंगों का ध्यान है, और जितनी शुद्ध होगी उतना वो अंग ऊपर से ऊपर तक और स्पष्ट से स्पष्ट तक और मुस्कुराता हुआ भगवान का मुख भी दिखेगा जितनी जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब। कुछ अनुभव है किसी को इस विषय में? आंखें बंद करते हैं, चरण कमलों की लाली तो कभी कभी दिखती है भगवान के चरण, लेकिन मुख के ऊपर जाते जाते अटक जाती है कहीं ना कहीं। जितनी एक आखिरी लाइन को आप देख लीजिए, उसमें एक बात का सावधान प्रभुपाद जी करेंगे। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अति अधिक व्यस्त हैं उन्हें अर्चना में सम्मिलित होना या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जा देनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अभी जिन लोगों की इंद्रिय तृप्ति में मन लगा हुआ है उनको भगवान के श्री विग्रह की पूजा करने का, उनको वस्त्र पहनाने का, उसको स्नान करने का इजाजत नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको भगवान के अंगों को देखते हुए उसका मन संसार के विषय विकारों में जाता है प्रायः। इसलिए आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन लोगों को भगवान के अर्चा विग्रह करने की किसी पूजा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको चाहिए कि विराट रूप का जाके ध्यान करें, क्योंकि वो भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है कि भगवान की अर्चना करने के लिए जब सुबह अंदर जाते हैं तो भगवान के सारे अंगों को स्पर्श भी करना पड़ता है, स्नान कराना है, कपड़े पहनाना है, तो उतना मानसिकता शुद्ध होगी तब उन अंगों को हाथ लगाने का अधिकार है। इसलिए एक बहुत आश्चर्य दिखता है अनुभव में, ये बात एक आश्चर्य की आती है, प्रभु जी हरे कृष्णा राधे श्याम, एक बात आश्चर्य की ये प्रभु जी अनुभव ये बता रहे हैं, ये भगवान की कोई बहुत एक विशेष व्यवस्था है कि जहाँ वृक्त साधु रहते हैं, वृक्त साधु का मतलब जो इंद्रिय तृप्ति से हटे हुए हैं, वहाँ तो मंदिरों के अंदर रोज भगवान का स्नान और वस्त्र बदलने की प्रक्रिया चलती है, पूजा पद्धति चलती है, लेकिन जहाँ महात्मा अथवा साधु वृक्त नहीं है और भोग विलास में वहां मूर्तियां तो रख दी हैं लेकिन शीशे की अलमारी में बंद है, उनको हाथ नहीं लगाते हैं, साल में दो बार कपड़ों को हाथ में पहनाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इससे एक बात का इस भावार्थ प्रभुपाद जी से एक बात ऐसे निकल के आती है अनुभव में कि जहां ठाकुर जी की पूजा जैसे अपने पास हो रही है अथवा जहां भी सुबह शाम भगवान को भोग लगता है, भगवान के वस्त्र चेंज होते हैं अथवा स्नान होता है, वहाँ शुद्धि की प्रक्रिया चल रही है, शुद्ध होने का रास्ता तो आगे है कि लोग अपने बुद्धि को शुद्ध कर रहे, कि वो एक प्रोसेस में है, काम में चल। और जहाँ मंदिरों में यही मूर्तियाँ ऐसी ही राधा श्याम सुंदर बिठाया है कि कृष्ण बलराम बिठाया है अथवा लक्ष्मी नारायण बिठाया है, लेकिन अलमारी में बंद करके शीशे में रख दिया है और बाहर से आके चले जाते हैं और साल में एक बार जन्माष्टमी को नया कपड़ा पहनाते हैं, इसका मतलब शुद्धि की उनकी क्रिया चालू ही नहीं हुई है और वो अधिकारी ही नहीं है भगवान के अंगों के दर्शन करने के। इससे बात ये बहुत साफ नजर आती है, जो आप कितने भी पूरे भारत में भ्रमण करके मंदिरों का दर्शन करें तो आपको 5% भी ऐसे मंदिर नहीं मिलेंगे, 5% ऐसे मंदिर नहीं मिलेंगे जिसमें अर्चा विग्रह की विधिवत पूजा होती। लेकिन 95% मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन पड़ी कैसे हैं? बंद पड़ी है अलमारियों में, बाहर जिसको म्यूजियम जैसे होता है वैकुंठ म्यूजियम बना के रखे हुए। तो ये बात, इस बात से एक अनुभव इस चीज का बहुत बहुत साफ है कि वो शुद्धि बुद्धि की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर रहे। वो साल में एक बार बुद्धि करते, इससे तो इसे हफ्ते में एक बार जाना हो तो फिर भी ठीक है, ये तो साल में एक बार बुद्धि को शुद्धि करने की प्रक्रिया चल रही है। तो लोग कैसे महीना महीना स्नान नहीं करते हैं, कोई एक आदमी कह रहा था, ये लोग एक महीना स्नान नहीं करते कैसे है? अरे हमको तो 25-26 दिन में खुजली होने लगती। दूसरा कह रहा है कि हम तो 25-26 दिन में खुजली होने लगे, इसका मतलब 25 दिन ये भी स्नान नहीं करते। तो ये साल में जो एक बार वस्त्र बदलते हैं, दूसरा कह नहीं नहीं भाई, हमने पूछा भाई कब वस्त्र बदलते हैं, हम तो उधर गए थे, उसने बोला जन्माष्टमी, बोला नहीं नहीं जन्माष्टमी नहीं, हम एक बार गुरु के पूजा के दिन भी एक वस्त्र का जोड़ा पहनाते हैं। तो ये ऐसे कह रहा है 28 दिन में खुजली होती है उसको। अरे भाई रोज, हमारे पास समय नहीं है, इसका मतलब बुद्धि को शुद्ध करने की इच्छा ही नहीं है। तो मंदिर तो बना है, भगवान को स्थापित किया है, लेकिन ये ध्यान की पद्धति के अनुसार उनको अभी तक अपने मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया चालू करने की इच्छा ही नहीं हुई। ये प्रमाणित पूरे, अब पूरा देख लीजिए, ये प्रमाण है इस चीज का। ये श्लोक इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा है कि जो पूजा नहीं कर सकते इसका मतलब वो शुद्धि की क्रिया कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। इसलिए ऐसे सब मंदिरों के अंदर, ऐसे सब मंदिरों के अंदर जो लोग जाते हैं दर्शन करने, अथवा जो मंदिर जिन्होंने बना है, उनका उद्देश्य भी भगवान हमें सुख संपत्ति धन और ये दे दे ताकि हम इंद्रिय तृप्ति करें। उन लोगों का लक्ष्य ये, हम रोज जाते हैं इस मंदिर में सुबह मंगल आरती में, आपके मन में क्या होता है? भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, जप करने बैठेंगे। कोई एक भी भक्त इस इच्छा से नहीं जाता है कि भगवान आज हम आपके मंदिर में सुबह सुबह आए तो कल हमारी लाटरी निकल जाए, एक भी भक्त नहीं जाता। ये बहुत बड़ा अंतर है कि जिनमें, क्योंकि शुद्धि की इच्छा बुद्धि की क्यों नहीं है, इसलिए बुद्धि शुद्ध करने की इच्छा नहीं है। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही मंदिर बनाए, मंदाए इसलिए कि भगवान क्या चाहिए, क्या सब आरतियां कैसे गाते हैं, सुना है उसको? आरती शब्द का अर्थ क्या है? एक आरती का मतलब है जो दुखी है, लेकिन भगवान तो दुखी नहीं है, उसको दीप दिखाएं। रति का मतलब है रति, हमारी भगवान में रति हो, ये तो प्रकाश करके भगवान के अंगों का नजदीक से ध्यान करना है ताकि लोग दूर से जो दर्शन पे आते हैं वो भगवान को देख सके। ये तो लाइट नहीं, तो दीप भगवान को दिखाने का, तो दर्शन करने के लिए, ताकि रति हो भगवान में। रति का मतलब बहुत बड़ा भगवान में प्रेम हो, रति भगवान में हो इसलिए। लेकिन आरती में गाते क्या है? हाँ, सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए तो हम अच्छी तरह से फंस जाएं। और ये दूसरा अध्याय क्या कहता है? अरे क्या जरूरत है तुमको तकिए की, जब तुम्हारे हाथ के ऊपर तुम सो सकते हो? क्या पेड़ों ने, क्या पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया है कि लोग भूखे मर जाएंगे? क्या फटे हुए कपड़े नहीं मिलते हैं कि जिससे साधु अपना कपड़ा वस्त्र बना के जी सकता है? तो ये अध्याय ध्यान भगवान के का शुरू होता है पहले बहुत सिंपल से सिंपल, सादा से सादा जीवन जब करेंगे तभी ये ध्यान कर सकेंगे। बहुत सीवन निष्किंचन हो कि कुछ नहीं, अपने आप को जितनी जीवन के लिए बहुत जरूरी आवश्यकता है उतनी ही जीवन की जरूरतों को जब हम सामने रखेंगे तब भगवान का ध्यान। जब जाते ही भगवान के पास हैं कि हमारा जो है वो धन बढ़ जाए और हमारा बल बढ़ जाए और हमारा परिवार बढ़ जाए और हमारा कारोबार बढ़ जाए, तो फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हैं तो भगवान की पूजा करने का तो कोई अर्थ है नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक साफ बात नजर आती है कि मंदिर तो बहुत खुल रहे हैं, बहुत मंदिर खुल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि भगवान हमारे लिए जैसे व्यवस्था अच्छी करे ताकि हम यहां रहें और सुखी रहें। लेकिन शिक्षा क्या है कि हमें नहीं रहना है यहाँ, क्योंकि यहाँ सुख है नहीं, हम भगवान आपके पास आना चाहते हैं। तो भगवान को तो बहुत सुंदर मंदिर दो, लेकिन अपने लिए चीजों को कम करो, अपने लिए जरूरतों को कम करो। तो ये पद्धति जो है ये बात साफ दिखाई दे रही है कि मंदिरों में जहाँ पूजा ठीक होती है वो बुद्धि को शुद्ध करने की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं, लेकिन जिसका मन अभी तक भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उसको भगवान के अंगों को स्पर्श करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कृपा करके सालंग्राम के रूप में प्रकट हो गए हैं, इसलिए विशेष रूप से गृहस्थियों को सालंग्राम की पूजा का अधिकार बहुत दिया है। गृहस्थी अपने घर में सालंग्राम रखें और तुलसी दल प्रतिदिन अर्पण किया करें, पान जल चढ़ाया करें। गृहस्थी को विशेष रूप से सालंग्राम को पूजा करने का अधिकार, इसलिए कि उसमें भगवान के अंगों का भी उसको ध्यान करने में उसका मन विषय विकारों में जा सकता है, ऐसे बिल्कुल साफ नजर आता है शास्त्रों में, ऐसे निर्धार किया। बहुत ये बहुत गंभीर विषय है शास्त्रों के, इसको ठीक समझना। अब हम ऐसे नहीं कहते हैं, हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के अंदर तो हम अर्च विग्रह को बहुत विधिवत पूजा करते हैं और हम पवित्रता की शुद्धि की क्रिया को चालू करके अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृपा करके हमको बुद्धि दे के हम आगे बढ़े, लेकिन प्रायः जो साधारणतः बात चल रही है बात उसके वर्णन कर रहे हैं उसमें ये बातें हैं नहीं। उनके लिए मतलब जो भगवान के अंगों का ध्यान करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति में और सुख भोग में अभी तक भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पार्थ चेत सम, जो भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य, भोग का मतलब मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए और ऐश्वर्य का मतलब धन चाहिए और वैभव चाहिए और नाम और प्रतिष्ठा चाहिए, ये हृदय की दुर्बलता है, जो इनमें लगे हुए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। उनके लिए ये श्रेयकर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जैसे कि अगले श्लोक में कहा गया है, अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। अब प्रभुपाद यहां दो विभाजन कर रहे हैं, विभाजन क्या कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम शून्यवादी हैं, निराकारवादी हैं, हमें अभी तक इच्छा नहीं है भगवान, वो जाके भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, सर्वत्र भगवान समाया हुआ है। लेकिन भक्तों के लिए मंदिर के अंदर स्थापित अर्च्य विग्रह को विधिवत पूजा करने का सलाह दी जाती है, क्योंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने ध्यानात्मिक कार्यकलापों में क्या है पर्याप्त शुद्धि नहीं होती, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। तो निर्विशेष और शून्यवादी क्या है भैया? निर्विशेष और शून्यवादी रोज एक मंत्र पढ़ते हैं प्रभुपाद प्रणति में, उसमें ये दो शब्द हैं, क्या निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारण। तो निर्विशेष क्या है और शून्यवादी क्या है? निर्विशेष विशेष नहीं है, सब एक जैसा है, निर्विशेष तो सब एक जैसा है, तो सभी भगवान है, इसका अर्थ तो ये हो गया सभी भगवान है और हम भी भगवान है, तो निर्विशेष का ही है। और निर्विशेषवादी मतलब वो आदमी जो निराकारवादी थे, सब कुछ एक समझ रहे थे, और शून्यवादी जो कुछ भी नहीं है, जैसे बुद्धिज्म बुद्ध मत है वो शून्यवादी का है, कुछ नहीं है, क्या है जो है संसार में भोग तो मत करो, मरने के बाद सब समाप्त हो गया। तो पाश्चात्य देशों में ये दो मतों का बहुत ज्यादा प्रचार था, शून्य और निर्विशेष का, और प्रभुपाद जी उन लोगों को भगवान के श्री विग्रह की पूजा का अधिकार देके ये शिक्षा दी। पाश्चात्य देश तारणे, पाश्चात्य देशवासियों को, बड़ी बुद्धिमानी से ये लिखा था कि पाश्चात्य देश में इस चीज का प्रभुपाद किया, तो भारत में भी बहुत है, लेकिन भारत में निर्विशेष शून्यवादी कहने से सारे के सारे साधु लड़ने आ जाएंगे, ये बहुत बड़े सावधानी से लिखा गया है ना, है सारे यहाँ में निर्विशेष शून्यवादी, लेकिन पाश्चात्य कहने कोई बात नहीं, पाश्चात्य वालों को तार गया ना, हम तो पहले ही तरे हुए, हमको क्या तारेंगे महाराज, इसका भाव ये है। इसलिए भागवत लिखती है कि जो अपने आप को समझते हैं मैं शुद्ध हो गया हूँ, वो अभी तक कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं, इसलिए उनका पतन होता है, वो भगवत धाम नहीं जाते हैं, उस निर्विशेष तक पहुँच के फिर भी संसार में लौट कर आते हैं। वो यहां वापस लौट के आते हैं क्योंकि विशेषता नहीं है, वहां आप कैसे बैठेंगे? भैया ऐसी जगह में आप बैठना पसंद करेंगे जहां कुछ भी नहीं हो, एक कमरा, कमरे की चार दीवारें हो, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं हो, न खाना है, न पीना है, न पंखा है, न लाइट है, न चित्र है, न पत्र है, न किताब है, उसके अंदर कितने दिन रहोगे? ऐसे लोग, मैं आपको बताता हूं, ऐसे हैं कुछ लोग। हम जाते हैं तो कहते हैं हमारे गुरु जी ये देखो इसके नीचे जो खड्डा बनाया है ना, ये नीचे गुफा है ना, इसमें 6 महीना रहे। घंटी बजाते थे जब हम भोजन दे के आते थे, तो घंटी अंदर थी ना, निर्विशेष तो नहीं था, घंटी तो बजती थी तब भोजन मिलता था, नहीं तो गुरु जी अंदर कहां 6 महीने बैठते, घंटी रखी थी अंदर। अरे घंटी का संग करते थे, भक्तों का संग नहीं करते थे, क्योंकि घंटी रोटी पहुंचाती थी। तो ये बड़ी विशेषता बताते, 6 महीने बाहर नहीं निकले, अंदर ही थे, केवल घंटी बजाते थे, बस हम जाते थे भोजन दे के आ जाते थे, बस महाराज कभी बाहर नहीं निकले इसको। और फिर हमने बोला उधर ही रह गए, नहीं नहीं 6 महीने के बाहर निकले, और तब हजारों शिष्य आए थे, मालाएं लेकर आए थे महाराज का, बहुत बड़ा उस समय तो इतना धन आ गया, तब से ये मंदिर हमारा बन गया। तो उद्देश्य क्या था महाराज का नीचे जाने में, खड्डे में बड़ा मंदिर बनाना उद्देश्य क्या था? देख लो उद्देश्य क्या था खड्डे में जाने का, भैया ये कहते हैं लोग, तो इसलिए कि बाहर क्यों निकले, उधर ही बैठते ना, जब उधर इतना आनंद था तो बाहर आए क्यों? अरे उधर तो मजबूर, जैसे जेल में किसी को डालते आनंद थोड़ी आता है, पड़ा होता है, पर जब निकले तब जान छूटे ना, ये तो अपने आप को जबरदस्ती जेल में डालना है। लेकिन अंतर सिर्फ ये, जेल में डालता है, बाहर आते हैं लोग उससे घृणा करते हैं, लेकिन ऐसे जाके कोई अंदर बैठ के बाहर आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, अंतर इतना है, क्योंकि कम से कम वो अंदर बैठ के विषय विकारों से हटके बैठा हुआ है, इतना अंतर है सिर्फ। लेकिन है दोनों अपने ऊपर जे कारागर में डालने का, अरे बाहर जाके भगवान का भजन करो, प्रचार करो, हरि कीर्तन करो, नहीं महाराज किसी से बात नहीं करेंगे, चुप करके बैठे। इतने सारे साधु आए उनका उद्धार क्यों नहीं करते, हरि कीर्तन कथा क्यों नहीं, महाराज बोलेंगे नहीं, आज नहीं बोले महाराज, क्यों नहीं बोलेंगे कि बोलेंगे तो ये जो आए भाग जाएंगे अच्छा है नहीं बोले, ये बुद्धिमत्ता होती है, नहीं बोलना बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है, नहीं तो मूर्खता जाहिर हो जाएगी। तो ये सब जो चल रहा है, ये ऐसा एक काम चल रहा है जो ये भागवत में उसका कहीं भी जो है नहीं किया गई, पुष्टि नहीं की गई। तो आज के सत्संग से अपने काम की चीज क्या है कि प्रतिदिन जब भगवान का दर्शन करने जाएं तो भगवान के चरणों को हृदय में बिठाने के लिए अच्छी तरह से देख के आए कि भगवान के चरणों की लालाएं, जो कृष्ण जी का चरण कौन सा वाला चरण है, जो जो आप जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे उसका तलवा सिर्फ दिखता है, दूसरे का तलवा नहीं दिखता, एक तलवा दिखता है एक नहीं दिखता है, वो कौन सा चरण है जिसका तलवा दिखता है, उस तलवे का इतना ध्यान करो जाके खड़े होके कि बाहर आओ तो सारा दिन कम से कम एक दिन ध्यान तो रहे कि दूसरे दिन जाएं तब तक दोबारा ताज़ा कर लेंगे। तो ध्यान करने की पद्धति भगवान के चरणों से देखने का शुरू करो और प्रतिदिन ये अभ्यास करो। इसलिए 3 बार त्रिकाल संध्या कहते हैं ना, 3 बार जाना चाहिए, दोपहर की आरती में, रात शाम की आरती में, कि सुबह देख के आए थे फिर भूल गए तो चलो दोपहर में चल के फिर देख के आ जाते हैं, चलो कुछ भूल गए तो शाम को फिर चल के जाके देख के आ जाते हैं, और सायन आरती के समय देख के सो जाएंगे तो सुबह मंगल आरती तक वो चरण हृदय में बसे रहे और उठ के जाके फिर भगवान के चरण देखने हैं। तो ये प्रक्रिया हमको चालू करनी चाहिए, और ये प्रक्रिया चालू करेंगे तो होगा क्या, होगी हमारी बुद्धि की शुद्धि। कौन करेगा बुद्धि की शुद्धि? भगवान जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, तदामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि की शुद्धि करेंगे। बुद्धि की शुद्धि भगवान करेंगे कब? जब हम ऐसे भगवान के अंगों का ध्यान करने का संकल्प करके इस ध्यान को प्रतिदिन करने का अभ्यास करेंगे। कई भक्तों को हमने सुना है जो भगवान जब मंदिर से बाहर भी जाते हैं तो ऐसे भगवान का ध्यान करके फिर भगवान के नाम जप में आरंभ करते हैं, दिन अपना आरंभ करते हैं भगवान के चरणों का ध्यान करके। जिस ठाकुर जी में ऐसे है कि आप जिस मंदिर में रहते हैं उसी मूर्ति से आपका संबंध स्थापित होता है, वही अर्चो विग्रह से, वही ठाकुर जी संबंध, सब जगह जाएंगे वो तो सब एक ही हैं, लेकिन ध्यान तो उसी जगह का होगा जहां हमारा मन एक बार केंद्रित हो गया। तो किसी एक ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित कीजिए, और चरणों से, हृदय में चरण देखने चाहिए, और चरण दिखते दिखते बुद्धि शुद्ध हो जाए, भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए, तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन चरणों को आपको अधिकार है देखने का, मुख भगवान को दिखाने का, कृपा भगवान की होगी तब मुख दिखेगा, लेकिन चरण देखने का आपको अधिकार है। इसका अभ्यास आप कीजिए और भागवत के पहले और दूसरे स्कंद को अच्छी तरह से, भगवान के चरणों का ध्यान करना है तो इसका अध्ययन ठीक तरह से करें, और बाकी स्कंदों को भक्तों के संग में बैठकर प्रतिदिन जो करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ भैया बोलो। भगवान का ध्यान करना चाहिए, बोलते राधा श्याम सुंदर का ध्यान करना, कृष्ण बलराम गौर निताय तीनों ठाकुर जी हैं। हमारी ध्यान की पद्धति के, हम सुबह जैसे दर्शन आरती में जाते हैं अथवा मंगल आरती में जाते हैं, गौर निताय प्रभुपाद को प्रणाम करके गौर निताय का दर्शन करते हैं, फिर कृष्ण बलराम, फिर राधा श्याम, अपने मंदिर में ध्यान की ये पद्धति है, इसी पद्धति से ध्यान करना चाहिए जी। हाँ तो गौर निताय के चरणों का भी ध्यान करें, पर हम प्रभुपाद के चरणों का भी जाते हैं तो देखे प्रणाम करते हैं, पर गौर निताय के चरण दिखते हैं, कृष्ण बलराम के दिखते हैं, श्याम सुंदर के दिखते हैं, और राधा रानी के चरणों के लिए एक साल इंतजार करो, राधा अष्टमी के दिन दिल खाएंगे, एक साल उसका इंतजार करो। राधा रानी की जो सेवा का भाव है, उनके हाथों के अंदर जो भगवान को देने के लिए माला है, उसका ध्यान करो बस, कि भगवान को कैसे सेवा कर रही है, या वही आपका ध्यान का अधिकार, जो राधा रानी ऐसे भगवान को अर्पण कर रही है, वही चित्र मन में बैठ जाए तो अच्छा है। भगवान की सेवा के लिए जो उनका भाव है, वो भाव के भगवान, हर चीज भगवान को अर्पित, श्याम सुंदर की सेवा में अनुभव तो ऐसे बता रहे हैं। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ माँ, हाँ श्रीलंग और सावन की सेवा स्त्रियां कर सकती हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। असल में सालंग राम की सेवा कर, मतलब सेवा करने का अधिकार गुरुजन देते हैं, जो भी शिष्य को अधिकारी समझते हैं उसको देते हैं, किसी भी ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार सिर्फ गुरुजनों को है जो देते हैं। शिष्य को चाहिए अपने गुरु के पास जाके प्रार्थना करे कि ठाकुर जी की पूजा करने की, तो वो जब देते हैं तभी करनी चाहिए। क्या रोज पढ़ते हैं सुबह, क्या गुरु की वंदना में क्या पढ़ते हैं? शिविग्रार धन नित्य नाना श्रृंगार नित्य मंदर मार्जना दो, तो गुरु जी हमको ये पद्धति सिखाएंगे कि भगवान का श्रृंगार कैसे करना है और उनकी पूजा कैसे करना है, मंदर मार्जन। तो इसके लिए जिसकी इच्छा हो कि मुझे भगवान की पूजा करना है, अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ कर और आज्ञा लेनी चाहिए, वो जो भी दें उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान के ध्यान करने का, पूजा करना, ध्यान करना, मैं तो गीता तो कहती है सभी मेरा शरण ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने के लिए बहुत सरल विधि जो कलयुग के लिए है, वो भगवान के नाम को जप करने की है। तो नाम संकीर्तन यज्ञ सबको करने का अधिकार है, उसमें किसी को निषेध नहीं है, उसमें किसी को निषेध नहीं है। लेकिन भगवान के अर्च विग्रह की पूजा के लिए योग्यता चाहिए। जैसे अभी आज हमने पढ़ा कि जिसका मन विषयों में लगा हुआ है, वो भगवान के अंगों को हाथ लगाएगा तो उसको विषय ही दिखाई देंगे, उसको भगवान के अंगों में कोई जो है शुद्धि करने के लिए मन की उसमें भाव आएगा नहीं। तो इसलिए नाम संकीर्तन का अधिकार सबको है, भगवान के ध्यान का अधिकार सबको है, कि दर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन विशेष अंदर पूजा करने का पद्धति का वो तो गुरुजन अधिकार देते हैं, उनका जब योग्य देखते हैं शिष्य तब उसको देखते हैं पूजा करने का, ऐसे ऐसे मान्यता ये है, विधान ये। स्वयं अपनी इच्छा से भाई बाजार से मूर्ति खरीद करके पूजा कर ले, उसका कोई ऐसा विधान नहीं। हमने जहाँ भी देखा है कि कुछ महात्माओं को हमने देखा है कि कोई शिष्य आग्रह करता है तो वो अपनी तरफ से ही अर्च विग्रह लेके देते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, स्थापित करके भगवान देने का अधिकार। तो कहते हैं कृष्ण तुम्हारा, तुम्हारे दीते पारे, तुम ही कृष्ण को दे सकते हो, हम भगवान अपनी तरफ से ला के नहीं अर्चना कर सकते, जब गुरुजन देंगे तभी हमको करने का अधिकार है। इसका अर्थ ये है, जब वो दे तब तो दे, नहीं तो चित्र को रख के घर में कर ले काम, इसलिए चित्र से शुरू करते हैं, भगवान का फोटो घर में लगा के पूजा कर ले, जब तक अधिकार हो जाए, शुद्धि हो जाती है, तब उसको जब ब्राह्मण ब्राह्मण दीक्षा का मतलब है कि हमारा शुद्धि कुछ हो गई है तब हम उसको करने के, ब्राह्मण का मतलब शुद्ध, जो अंतःकरण शुद्ध हुआ है तो उसको पूजा करने का अधिकार होता है। आपका क्या प्रश्न प्रभु? भगवान के आंखों का दर्शन रामानुज आचार्य ने एक भक्त को कराया कि उसकी काम वासना खत्म हो गई, तो रामानुज आचार्य ने कराया इसलिए काम वासना खत्म हो गई क्योंकि उसने वो उसको इतनी उसके ऊपर कृपा की कि जाओ रंगनाथ भगवान का दर्शन करके आओ तो तेरी संसार में आसक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसे तो रासलीला में भी लिखा है कि जो इसको पढ़ेगा उसकी काम वासना खत्म होगी, तो ये तो प्रक्रिया है लेकिन अधिकार रामानुज जैसा कोई महात्मा देगा तभी शुद्धि होगी। हम अपनी तरफ से जाके आंखें देखेंगे तो शुद्धि होगी, इसका कोई ऐसे तो हजारों आज रोग जाते हैं लेकिन सबकी शुद्धि थोड़ी हो रही। तो रामानुज आचार्य जिसके ऊपर कृपा करे, वैष्णव जिसके ऊपर कृपा करे, साधु जिसके ऊपर कृपा करे, वो भगवान का मुख देखेगा तो उसका उद्धार हो। प्रभुपाद को ये अधिकार था इसलिए उन्होंने कृष्ण परम पुरुष भगवान दशम स्कंद को पहले लिख दिया, उनको ये अधिकार था। और उन्होंने ये कहा कि भले आपको लगे कि ये लड़का खड़े हैं एक दूसरे के गले में बाहें डाल के, लेकिन ऐसे भी कोई इसको पढ़ेगा तो फिर भी शुद्धि होगी, ये वो अपने अधिकार से कह रहे हैं। तो आचार्य को ये अधिकार है लेकिन हमको ये अधिकार नहीं है, हम नहीं ऐसा कर सकते। प्रभुपाद को अधिकार था तो उन्होंने कृष्ण परम पुरुष भगवान दशम स्कंद भागवत का पहले लिख दिया और उसमें लिखा भी ऐसे। तो रामानुज को अधिकार है, आचार्य जनु जो है उनको अधिकार मतलब उनका अनुग्रह है किसी के ऊपर, एक विशेष व्यक्ति के अथवा सारे मानव समाज के ऊपर उसके उद्धार करने का। जैसे महाप्रभु ने सबको अधिकार दिया नाम जपने का, तो ये अधिकार महाप्रभु ने, उससे पहले हरे कृष्ण मंत्र भी वेदों का मंत्र है, इसको सब नहीं जपते थे, सिर्फ जो 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 ब्राह्मण है अथवा जो 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 वेद अध्ययन का अधिकारी वही जपता था, सबको जपने का अधिकार नहीं था इसका भी। ये तो महाप्रभु चेतना की कृपा से ये मंत्र सबको जपने का अधिकार मिला। तो ऐसे आचार्य अथवा भगवान अवतार लेके आते हैं तभी ऐसा कोई प्रमाणित कार्य करके लोगों का उद्धार करते हैं, एक विशेष व्यक्ति का अथवा सामान्य सब जनता का। लेकिन हमारे लिए तो उस पद्धति को ही फॉलो करना है, उसी के ऊपर ही चलना है जो निर्धारित नियम है। भगवान ये तो है, ये तो बात करेंगे, हमारे मन की अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही भगवान के अंगों की पूजा करनी है। लेकिन अगर हमारा मन निर्विशेष में लगा हुआ है, हम समझे ये मूर्ति तो भगवान की टेम्पररी है, इसके बाद हम भगवान का ये निर्विशेष में प्रवेश कर जाएंगे निराकार में, तो फिर उसको उस मूर्ति का टाइम खराब नहीं। हाँ हाँ अपने वात्सल्य भाव का कहा कि कोई आदमी का मन शुद्ध नहीं है फिर भी भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है उसका पूजा करते हैं। वात्सल्य भाव की पूजा करने का मतलब बेटे की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक समझना। तो विशेष रूप से ये भाव है जिसका है वो कर सकते हैं, वो शुद्धि ही होगी उससे, नहीं कि नहीं। तो ये बात सिर्फ ये कह जा रही है जिसकी इंद्रिय तृप्ति में अभी तक इतना रिक्त है कि जो भगवान के अंगों को हाथ लगाने से उसका मन भोग में चला जाता है उसको अधिकार नहीं है। जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य कर रहा है उसको तो करना चाहिए। अगर सभी शुद्ध होंगे फिर ये काम करेंगे ऐसे नहीं है, शुद्ध की प्रक्रिया यही है, शुद्धि की प्रक्रिया यही है कि उसको अपनी उस उपासना को जारी रखना चाहिए। लेकिन हम बात माता जी का उत्तर ये कि ये गुरुजनों से आदेश होता है तब ये कार्य किया जाता है, इसका विधि विधान ये। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु रामानंद के बीच में विचार है, हमारे बीच में विचार नहीं है। उन्होंने दिया है कि जो इस स्तर पे आएगा, ये सीढ़ियां हैं जो तय करके आएगा उसका ये हाईएस्ट है, लेकिन वो सीढ़ियां सब हैं कि आप कहाँ खड़े हो उसमें वो देख लो, वो तो बैठ के ये चर्चा कर सकते हैं। उस चर्चा में हमको एक मार्ग बताया है कि वर्ण आश्रम अच्छा है, तो कुछ लोग वर्ण आश्रम में ही अपने आप को ब्राह्मण समझ के ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो फिर इससे ऊपर दूसरा स्तर ये है कि भगवान की ऐसे पूजा करनी चाहिए सेवा के भाव, अच्छा ठीक है इसमें कोई राजी हो जाते हैं। लेकिन हाईएस्ट है कि भगवान का जो है वो प्रेम, भगवान भगवत प्रेम किसमें, माधुर्य भाव में, ये तो परिकाष्ठा है, ये तो बहुत ऊपर का स्तर है। आगे वाले श्लोकों में जहाँ वर्णन आएगा वहाँ प्रभुपाद जी इसी भक्ति का वर्णन करना शुरू कर देंगे कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो ये मतलब एक आदमी को बताना कि सबसे ऊंचा स्तर ये तो ठीक है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब हम गए थे एक जगह के, वो पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर किसी ने कहा कि भस्मासुर को मारने के लिए जब वो भगवान शंकर के पीछे भागा तो भगवान विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर को मारा, तो वो भगवान शंकर छुप के कहीं बैठ गए थे पहाड़ के अंदर, रुके थे गुफा है इसमें बैठे थे। तो भगवान विष्णु ऊपर से आए और खड़े होकर बोले अब निकला भगवा भस्मासुर मर गया, तो वहाँ विष्णु चरण है ऊपर, विष्णु चरण मर को भाई विष्णु चरण देखना चाहिए, पहाड़ के आधे में है। अभी हिम्मत की हमने बोला चढ़ते हैं लेकिन आधे में गए हम नहीं चढ़ पाए, तो वो भगवान शंकर जहाँ छुपा था वहाँ पहुँचे, वहीं पानी लिया स्नान किया। विष्णु चरण ने जाना तो वहाँ तक है लेकिन हमारा शरीर काम नहीं करता, नहीं चढ़े, वहाँ से वापस लौट के आए। तो हाइएस्ट स्टार तो वो था कि जाना तो विष्णु चरणों तक था लेकिन नहीं पहुँच पाए क्योंकि ये शरीर काम नहीं कर रहा था, अधिकार था, आधे पहाड़ में पहुँचे फिर वापस लौटे। तो जाना तो विष्णु चरणों तक था लेकिन अब ये संकल्प कि अगली बार आके यहाँ रात को सो जाएंगे, सुबह फिर यहाँ से उठ के ऊपर जाएंगे। तो कहने का भाव ये कि हाइएस्ट तो वो था लेकिन उसकी क्षमता है कि नहीं मुझ में, ये तो हर एक आदमी के ऊपर निर्धारित है कि उतना ऊपर उठने में उसको कितना टाइम लगे। जब पहले सीढ़ी तक पहुंच गए फिर दूसरी तक पहुंचे फिर तीसरी तक पहुंचेंगे, ऊपर जाना ऊपर है ये तो ठीक है लेकिन शुरू कहीं से करना पड़ेगा। फिर इस सारे के अंदर वही बात आती है कि भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों की कृपा भक्तों के अनुग्रह से ही हमारी शुद्धि होगी, अपने आप प्रयास करने में वही मार्ग होगा, नीचे जाके छुप के बैठना किसी से नहीं बोलना वो प्रगति का मार्ग नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण बिल्कुल इस दिखता है कि जो उनकी शुद्धि करने की इच्छा ही नहीं है, ऐसे मूर्तियाँ रख दी हैं सब जगह पे, तो उससे ये एक ही बात यही लगती है उसमें से।